मालविका को अभिमन्यु ने पार्टी के अंदर नहीं घुसने दिया था, इसलिए वो बाहर ही थी। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब मिस्टर गौतम मित्तल और नैना मित्तल कियारा के साथ अपने घर जा रहे थे, तब नैना ने मालविका को देख लिया था। मालविका की बातें उसने सुनी और उसे काफ़ी अजीब लगी। नैना गाड़ी से उतरी और मालविका के सामने जाकर सीधे सीधे उसे ये पूछ लिया कि उसकी बेटी इशिका नहीं बल्कि आयशा है ना। एक अनजान शख्स के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर मालविका के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन तुरंत ही उसने अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल करके कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और तुम मुंह उठाकर क्यों मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हो, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती होती अगर मिस आयशा मेरी बेटी होती। मालविका ने भले ही अपना बिहेवियर नॉर्मल कर लिया हो, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट को नैना ने देख लिया था। नैना ने सख्ती से कहा, झूठ बोल रही हो ना तुम, कौन सी माँ अपनी बेटी से इतनी नफरत करती है और उसके बारे में इतना बुरा बोलती है। मालविका ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि मेरे पास नफरत करने की वजह है। मैंने सोचा था कि मेरे बेटा पैदा होगा तो उस घर में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन वो मनहूस पैदा हो गई। रही बात मिस आयशा को इतना प्यार करने की, तो आदर्श उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आयशा के साथ रहती हूँ तभी उस घर में मेरी थोड़ी तो इज्जत बनी हुई है। नैना ने उससे ज्यादा बहस नहीं की। उसकी छोटी और घटिया सोच देखकर नैना को उससे घिन आ रही थी। वहीं गौतम ने उनकी बातें सुनी तो नैना के पास आते ही उन्होंने कहा, इस औरत की बातों में पॉइंट तो है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस बारे में ज्यादा ही सोच रहा हूँ कि मैडम मर्चेंट और इशिका की शक्ल मिलती है। नैना ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, हाँ पहले मुझे लगता था कि आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं और ज्यादा ही सोच रहे हैं, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। ये औरत दिखावा कर रही है और इस जैसी झगड़ालू औरतें कब से सफाई देने लग गईं। एक बात तो साफ है कि ये कुछ बहुत बड़ा राज छुपाकर बैठी है, वो भी काफी सालों से। मुझे भी यही लगता है, गौतम ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर वो वहां से चले गए। वहीं पार्टी के सारे गेस्ट जा चुके थे। अभिमन्यु और इशिका ने उन्हें विदा किया और फिर बाद में अंदर आए तो उन दोनों ने देखा कि अंदर का माहौल काफी गर्म था। पूरी राजवंश फैमिली वहां इकट्ठी हो रखी थी। अभिमन्यु इस बारे में पहले से ही जानता था कि उन लोगों के लिए इशिका को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर पाना आसान नहीं था। वो इस तरह के ड्रामे के लिए पहले से तैयार था। जब इशिका और अभिमन्यु अंदर आए तो उन्होंने वसुधा को गुस्से में कहते हुए सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब लोग क्या सोचते हो, वो मेरी बहू है, कोई उसे अभिमन्यु से अलग नहीं कर सकता है। अभिमन्यु को देखते ही वसुधा उसके पास गई और बोली, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो, तुम्हारे बाप के साथ बहस करने की मेरी हिम्मत नहीं है अब, कहकर वो काउच पर बैठ गई। इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे पर देखा तो उसके चेहरे के भाव सर्द थे। फिर उसकी नज़र प्रशांत पर पड़ी जो इशिका को नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। एक नज़र इशिका को देखने के बाद प्रशांत ने सख्ती से अभिमन्यु से कहा, मैं ज्यादा बहस नहीं चाहता हूँ, चुपचाप इस लड़की को तलाक दो और रिश्ते को खत्म करो। और मैं ऐसा क्यों करूंगा, अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा। प्रशांत ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसे बेवकूफी भरे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम अच्छे से जानते हो इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये एक नाजायज बेटी है और ऐसी लड़की राजवंश खानदान की बहू नहीं बन सकती। प्रशांत का साथ देते हुए नकुल ने कहा, डैड की बात समझने की कोशिश करो, उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तुम्हारी पत्नी से, पर तुमने सुना ना कि पार्टी में आए हुए लोग कैसी बातें कर रहे थे। राजवंश फैमिली के लोग फिर से अभिमन्यु को दबाने की कोशिश कर रहे थे और इस बार वो इशिका का सहारा ले रहे थे। इशिका ने अपनी गर्दन झुका ली, तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर पूरी सख्ती से कहा, लेकिन मैंने किसी को कोई बात करते नहीं सुना। नकुल ने गुस्से से मुठ्ठियां बांध ली। उन्होंने अपने गुस्से को काबू करके कहा, तुम अपनी पोजिशन इस वक्त अच्छे से जानते हो, कोई तुम्हारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा, सब तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे थे, तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा, बोलते हुए उन्होंने नक्श की तरफ देखकर आगे कहा, नक्श अपने चाचू को बताओ कि लोग इनके बारे में क्या बोल रहे थे। कुछ भी कहने से पहले नक्श ने इशिका की तरफ देखा और फिर अभिमन्यु से बोला, वो लोग कह रहे थे कि मिस्टर राजवंश से ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी नाजायज लड़की से शादी करेंगे, जरूर उसने कोई जादू टोना करवाया है। आप कंपनी के हेड हैं तो फैमिली के हेड भी आप ही हो जाते हो और आखिरी फैसला आपका होता है, तो क्या अब आगे से आपके फैसले में ये लड़की भी शामिल रहेगी। वो बहुत कुछ कह रहे थे, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ चाचू आपको, नक्श ने मासूम बनने का दिखावा किया। कुछ पल रुकने के बाद में नक्श ने आगे कहा, मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ, इशिका वाकई काफी खूबसूरत है, इसे कोई भी अपना बनाना चाहेगा और मैं खुद इसके पीछे था, इससे शादी करना चाहता था, पर जब मेरे सामने इसकी सच्चाई आई तब मैंने इसे छोड़कर आयशा को चुना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि जो बात लोग आज आपके बारे में बात बना रहे हैं वो कल मेरे बारे में बनाएंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाइए वरना शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, नक्श बोले जा रहा था, तभी अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, हैरानी की बात है कि लोग राजवंश खानदान की बहू के बारे में इतना भला बुरा कह रहे थे और तुम वहां खड़े होकर सब चुपचाप सुन रहे थे, क्या क्या मतलब है आपका, नक्श ने हड़बड़ाते हुए कहा। अभिमन्यु ने जवाब में कहा, वो मेरी पत्नी है तो इस प्रॉपर्टी पर उतना ही हक इसका है जितना मेरा है। ये इस घर की मालकिन है और लोग इसके बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे और तुम एक ऑडियंस बनकर उनकी बातें सुन रहे थे। क्या एक बार भी तुम्हारे दिल में ये नहीं आया कि इस खानदान के ऊपर उठने वाले सवालों के तुम जवाब दो? नक्श घबरा गया था, वो अभिमन्यु के सामने जवाब देने के लायक नहीं रहा। तभी उसके बचाव में लकुल ने आगे आकर कहा, तो तुम क्या चाहते थे कि नक्श दादी का बर्थडे खराब करते हुए सबके साथ मारपीट करने लगता? हमारे खानदान के संस्कार ऐसे नहीं है। हाँ, दिख रहा है मुझे कि आपके खानदान के संस्कार कैसे हैं, जो इस घर की बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें सुन सकते हैं लेकिन अपना स्टैंड कभी नहीं लेंगे, अभिमन्यु ने सार्कास्टिकली जवाब दिया। नकुल को जवाब देने के बाद अभिमन्यु ने नक्श से कहा, तुमसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अभी तुमने जो बातों की लिस्ट बताई है, जिस आदमी ने भी वो बात कही है, मुझे उन सबका नंबर दे देना और नाम बता देना, मैं खुद निपट लूंगा सबसे। नक्श सोच में पड़ गया, वो आखिर उन लोगों के नाम कैसे दे सकता था जो बड़ी बिजनेस फैमिली से आते थे, इनमें उनका ही नुकसान था। फिलहाल वो अभिमन्यु को इस बारे में कहता तो वो नहीं समझ पाता। फिर उसने गहरी सांस लेकर बात को टालते हुए अभिमन्यु से कहा, क्या आपको लगता है कि ये इसके लायक है? आप ये दावा कर रहे हैं कि आप इसके साथ पिछले 2 सालों से शादीशुदा हैं, जबकि कॉलेज में इसके पीछे बहुत से लड़के घूमते थे। अगर इसकी सच्चाई मेरे सामने नहीं आती तो ये मेरे प्रपोजल को कभी मना नहीं करती और इस वक्त ये आपके नहीं मेरे साथ होती। जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की, अभिमन्यु ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया था। नक्श खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तभी नकुल बीच में आया और उन्होंने नक्श को अभिमन्यु से छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम इस लड़की के चक्कर में अपने भतीजे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? हम आराम से बात कर रहे हैं, बीच में वायलेशन कहाँ से आ गया?
हाँ, क्योंकि इसने इशिका के इंसल्ट की है जो रिश्ते में इससे बड़ी है। जानते हैं ना कि इस घर के क्या उसूल हैं, बड़ों से आप कितनी भी नफरत क्यों ना करो लेकिन आपको इज्जत देनी पड़ती है। अब आपको ही देख लीजिए, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। फिर अभिमन्यु ने नक्श की तरफ देखकर कहा, अगर आगे से मैंने तुम्हारे मुंह से इशिका के लिए कुछ भी ऐसा वैसा सुना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम उसे उसके नाम से भी ना बुलाओ, आंटी लगती है ना वो तुम्हारी, अब से तुम उसे वही कहोगे। अभिमन्यु ने पहले मजबूरी में इशिका के बारे में बहुत उल्टा सीधा सुन लिया था क्योंकि उनके रिश्ते की सच्चाई वो बाहर नहीं ला सकता था, लेकिन अब वो किसी के मुंह से भी इशिका के लिए एक गलत शब्द तक नहीं निकलने दे रहा था। नकुल और नक्श दोनों का ही अभिमन्यु पर बस नहीं चला। नकुल ने प्रशांत की तरफ देखकर इशारा किया तो प्रशांत ने अभिमन्यु से सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया, मुझे कोई बहस नहीं सुननी है। या तो इस लड़की को तलाक दो या फिर अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दो, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़की के साथ तुम शादी निभाओ या फ्यूचर में बच्चे पैदा करो। अभिमन्यु के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। आखिर प्रशांत ने अपना दाव खेल ही दिया था और वो था अभिमन्यु को कैसे भी करके राजवंश एम्पायर की पोजीशन से हटाना। अभिमन्यु उन्हें कोई जवाब देता उससे पहले एक हाउस हेल्पर वहां पर आया और अभिमन्यु से बोला, सर, मिस्टर एंड मिसेज मित्तल यहां पर आए हैं, वो आपसे और मिस सिंघानिया मिसेज राजवंश से मिलना चाहते हैं। उन्हें बोलो थोड़ी देर वेट करें, हम बस आ रहे हैं, अभिमन्यु ने उसे शांति से जवाब दिया, जिसके बाद हाउस हेल्पर वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही अभिमन्यु ने प्रशांत की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन नहीं करूंगा, कोई वैलिड पॉइंट नहीं है आपके पास मुझे मेरी पोजीशन से हटाने का। किसने कहा वैलिड पॉइंट नहीं है? आज पार्टी में मीडिया रिपोर्टर बाकी लोग भी मौजूद थे और उन्हें इस लड़की की सच्चाई पता है। हमारी इमेज पर फर्क पड़ेगा और उसका सीधा सीधा असर कंपनी पर। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण है और कुछ नहीं, प्रशांत ने जवाब दिया। इन सब में उर्वशी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने इशिका से कहा, देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, पर अगर तुमने अभिमन्यु को सच में दिल से अपना पति माना है तो उसे डिवोर्स दे दो ताकि उसका फ्यूचर खराब ना हो। इशिका बेवकूफ़ नहीं थी जो उनकी बातों को ना समझ सके। आज अगर अभिमन्यु प्रणाली को अपनी पत्नी बताता, फिर भी वो उसको एक नॉर्मल लड़की बोलकर उसे मजबूर करते कि वो अपनी पोजीशन से रिजाइन करते। उनका मकसद ही यही था, अभिमन्यु को राजवंश एम्पायर के सीईओ की पोजीशन से हटाना। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ फिर से पकड़ लिया था ताकि वो किसी भी हाल में खुद को अकेला ना समझे। इशिका नहीं जानती थी कि उसका ये नाजायज बेटी होने का टैग उसके साथ साथ अभिमन्यु के लिए भी एक मुसीबत साबित होगा। उसकी आंखें नम हो रही थीं। इशिका ने अभिमन्यु का हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन अभिमन्यु ने जानबूझकर उसका हाथ और भी कसके पकड़ लिया था। इशिका अभिमन्यु को समझाती, उससे पहले अभिमन्यु ने उनसे कहा, क्या कानून की किसी भी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई नाजायज लड़की किसी कंपनी के सीईओ की पत्नी नहीं हो सकती? अभिमन्यु की बातों ने सबका मुंह बंद करवा दिया था। उसने आगे कहा, अगर मुझे मेरी पोजीशन से हटाना है तो जो प्रोसेस है उसे फॉलो कीजिए। बोर्ड मीटिंग बुलाएं, शेयर होल्डर्स वोट करेंगे और फिर उसी के हिसाब से डिसीजन होगा। राजवंश फैमिली बेवकूफ नहीं थी। अगर वो सही तरीके से अभिमन्यु को पोजीशन से पहले हटा सकते तो अब तक वो ये काम कर चुके होते। अभिमन्यु अब 53% शेयर्स का मालिक था। ऊपर से बाकी शेयर होल्डर्स के साथ भी उसके अच्छे कनेक्शन थे, तो सब उसे ही वोट करने वाले थे। उन सब की बहस से वसुधा इरिटेट हो गई थी। वो जोर से चिल्लाकर बोली, बस बहुत हो गया,
तुम लोगों के बुरे इरादे खत्म ही नहीं होते। अगर तुम मेरी बहू को अपनी बहू नहीं मानते हो तो मैं भी तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती। अब निकलो यहाँ से। मॉम, आप समझ नहीं रही हैं, मैं बस ये कंपनी के फायदे के लिए ही कर रहा हूँ। पार्टी में सब लोग आए थे और अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। देखना, कल न्यूज़ में आर्टिकल आने वाले हैं, सब लोग हमारे खानदान पर उंगलियाँ उठाएंगे। प्रशांत ने जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसके कहते ही नकुल तुरंत सचेत हो गया था। वो अपना मोबाइल दिखाते हुए बोला, कल का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है डैड, आप देख सकते हैं कि अभी से न्यूज़ ट्रेंड में आने लगी है। सभी न्यूज़ और पोस्ट को देखने के बाद प्रशांत ने सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा, ये लो, सब अभी से शुरू हो गया है। अब जाकर सबको सफाई दो कि तुम्हारी प्यारी पत्नी की असली पहचान क्या है। इतनी शानदार पार्टी रखी थी, वो ट्रेंडिंग टॉपिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही ट्रेंड कर रहा है। इशिका ने बीच में बोलते हुए कहा, आपने अभी ट्रेंडिंग टॉपिक ठीक से देखे ही कहा है, एक बार चेक कर लीजिए फिर सवाल खड़े कीजिएगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या देखना है या क्या नहीं, प्रशांत ने उसे डांटते हुए कहा। तभी अभिमन्यु इशिका के सामने आ गया। अभिमन्यु ने प्रशांत को घूरते हुए कहा, कई बार छोटे भी बड़े लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जब ये कह रही हैं तो आपको देखने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, डैड देख लेते हैं, ताकि कल को आपका छोटा बेटा आप पर ये इल्जाम न लगाए कि आप उसके साथ भेदभाव करते हो, नकुल ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा। नकुल इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए था क्योंकि इन सभी पोस्ट और न्यूज को वायरल करने के लिए उसने पैसे खर्च किए थे। जैसे ही पार्टी में अभिमन्यु ने इशिका को अपनी पत्नी बताया था, उसके बाद ही नकुल ने अपने आदमियों को अभिमन्यु के खिलाफ आर्टिकल छापने के लिए अच्छी खासी रकम भेज दी थी। वहीं जब इशिका के कहने पर जब प्रशांत ने रीसेंट ट्रेंडिंग न्यूज देखी तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।